ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। यमपंचक अंतर्गत आज गोवर्धन और गाय पूजा हुई। नेवार समुदाय ने मनाई महापूजा। नेपाल संबत के नए वर्ष 1145 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। नेपाल भाषा को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। वर्तमान सरकार को पार्टी की ओर से कोई अवरोध नहीं होगा, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देववा का कथन। और मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने इस इलाके में बमवर्षक विमान, लड़ाकू फाइटर प्लेन और नौसेना के विमानों को भेजने का किया है आदेश। अब समाचार विस्तार से। यमपंचक अंतर्गत आज गोवर्धन व गाय पूजा मनाई गई। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन आज आंगन में लेप पोत करके गाय के गोबर से सांकेतिक गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाए जाने के स्मरण में गोवर्धन पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। आज ही यथाविधि गाय की पूजा आराधना कर गाय पूजा पर्व भी मनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रथम महिला सविता पौडेल के साथ आज गाय पूजा की। राष्ट्रपति पौडेल ने शीतल निवास में विधिपूर्वक गाय की पूजा की, ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। वहीं आज नेवार समुदाय में महापूजा मनाई गई। हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन नेवार समुदाय महा यानी आत्मपूजा पर्व मनाता है। मनुष्य की आत्मा अत्यंत महत्वपूर्ण होने की मान्यता के साथ आत्मपूजा की जाती है और ये शास्त्रीय है, ये बात धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डॉ रामचंद्र गौतम ने बताई। बता दें कि ये पर्व नेवार समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों खासतौर पर काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, पनौती, बारह बिसे, चौतारा लगायत में मनाया जाता है। नेपाल संबत का नया साल 1145 प्रारंभ होने के अवसर पर आज काठमांडू के वसंतपुर, भक्तपुर की नयाठेमी, ललितपुर के मंगल बाजार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। शंखधर साखुआ प्रतिष्ठान द्वारा आज मध्यपुर ठेमी स्थित शंखधर साखुआ चौक पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल भाषा को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की प्रक्रिया को सरकार आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिष्ठान की कुछ जायज मांगों को राज्य की क्षमता अनुसार क्रमशः पूरा किया जाएगा। नेपाल संबत के प्रवर्तक एवं राष्ट्रीय विभूति शंखधर साखुआ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भाषा, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए सबको प्रयास करने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल संबत 1145 आरंभ होने के अवसर पर स्वदेश और विदेशों में रहे संपूर्ण नेपाली नागरिकों को सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामना दी है। आज एक शुभकामना संदेश जारी करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल संबत से संपूर्ण नेपालियों के बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, बंधुत्व की भावना में बढ़ोतरी होने का विश्वास जताया। इसी तरह नेपाल संबत 1145 के अवसर पर उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने भी संपूर्ण नेपालियों के प्रति शुभकामना व्यक्त की है। इसी तरह सभामुख देवराज घिमिरे, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड लगायत नेताओं ने भी नेपाल संबत के नए वर्ष के उपलक्ष्य में सभी नेपालियों को शुभकामनाएं दी हैं। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देववा ने कहा कि पार्टी की तरफ से सरकार को किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं होगा। नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति भक्तपुर द्वारा आज आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा जय नेपाल भक्तपुर स्मारिका लोकार्पण कार्यक्रम में सभापति देववा ने कहा कि समस्या समाधान करने के लिए पार्टी सरकार को सहयोग करेगी। सभापति देववा ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व की सरकार देश के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल दो बड़े देशों के बीच में स्थित है, इसलिए सरकार को शक्ति संतुलन समेत हर चीज को ध्यान में रखते हुए कदम आगे बढ़ाने होंगे। कार्यक्रम में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि बहरहाल कांग्रेस हिमालय से सहकार्य और प्रतिस्पर्धा दोनों कर रही है। विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा सड़कों पर अवैध रूप से टैक्स वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन को ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने का निर्देश किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास छोनी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा है कि समाज के हर नागरिक को आधारभूत सुविधाएं और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। आज परसा कारागार कार्यालय वीरगंज का निरीक्षण करते हुए पेयजल मंत्री यादव ने कहा कि कैदियों के जीवन स्तर और भौतिक पूर्वाधार में सुधार पर सरकार ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि वो जेल में क्षमता से अधिक कैदियों, जर्जर पूर्वाधार और बिजली की समस्या जैसे मुद्दों पर संबंधित निकायों का ध्यान आकृष्ट करेंगे। अछाम की ढकारी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 रावला सैन में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोग घायल हुए हैं। जिला प्रहरी कार्यालय अछाम के प्रमुख ईश्वरी प्रसाद भंडारी से मिली जानकारी के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए ढकारी स्वास्थ्य चौकी ले जाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अब अमेरिका ने इस इलाके में बमवर्षक विमान, लड़ाकू फाइटर प्लेन और नौसेना के विमानों को भेजने का आदेश दिया है। ये जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने दी। बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ठीक 25 दिन बाद इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया। अब ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर पलटवार करने की बात कही है। यही वजह है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अधिक विमानों की तैनाती करने में जुटा है। अमेरिका ने कई B-52 बमवर्षक विमान, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, टैंकर विमान और नौसेना के विध्वंसक विमानों को तैनात करने का आदेश दिया है। जल्द ही ये विमान पश्चिम एशिया पहुंचेंगे। उधर USS अब्राहम लिंकन युद्ध पोत जल्द ही अमेरिका लौट जाएगा। USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और उसके स्ट्राइक ग्रुप में शामिल 3 विध्वंसक जल्द ही सैन डिएगो स्थित बंदरगाह पहुंच जाएंगे। भारत की नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली केरल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी PTI ने रेलवे पुलिस के हवाले से बताया कि हादसा आज शाम को शोरानूर रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां केरल एक्सप्रेस से टकराने के बाद तमिलनाडु की 2 महिलाओं समेत 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। पीटीआई के अनुसार ट्रेन ने दोपहर करीब 3:05 पर इन कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जब ये कर्मचारी रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर शोरानूर पुल के पास रेलवे ट्रैक से कचरा साफ कर रहे थे। रेलवे द्वारा सफाई कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी टक्कर के कारण ट्रैक से नीचे गिर गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमपंचक अंतर्गत आज गोवर्धन और गाय पूजा हुई। नेवार समुदाय ने मनाई महापूजा। नेपाल संवत के नए वर्ष 1145 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। नेपाल भाषा को पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। वर्तमान सरकार को पार्टी की ओर से कोई अवरोध नहीं होगा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा का कथन। और मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने इस इलाके में बमवर्षक विमान, लड़ाकू फाइटर प्लेन और नौसेना के विमानों को भेजने का दिया है आदेश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।